व्यवस्था विवरण अध्याय एक। अपने अध्ययन की श्रृंखला में हम आज व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं। बाइबल के अंग्रेजी संस्करण में इस पुस्तक के नाम का अर्थ है दूसरा विधि विधान या व्यवस्था। ये वास्तव में मूसा का अपनी प्रजा को अंतिम संदेश है। इसमें मूसा के लगभग आधे जीवन का तथा उसके अंतिम महीने का वृत्तांत है। इस समय उसकी आयु लगभग 120 वर्ष है। उसकी दृष्टि स्पष्ट है और इसका सुनना भी स्पष्ट है। वो अपनी प्रजा के सामने खड़ा होकर अब तक के परमेश्वर के कामों को फिर से याद करता है, क्योंकि उनमें से अनेक मिस्र से निकलने के बाद जंगल में पैदा हुए थे। उन्होंने लाल सागर के दो भाग किए जाने के चमत्कार को नहीं देखा था। उन्हें मिस्र के भयंकर दासत्व का अनुभव नहीं था, क्योंकि वे उस समय आबोध बच्चे थे, अतः उन्हें जंगल के खतरों का भी ज्ञान नहीं था। मूसा मिस्र से निकल आने के बाद अब तक के 40 वर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कराता है। वहां लिखा है 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन, 41वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन उन्होंने यर्दन नदी पार की और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। इससे पहले उन्होंने मूसा की मृत्यु का 30 दिन तक शोक मनाया था। मूसा के अंतिम 40 दिन और अपनी प्रजा को उसका अंतिम संदेश आदि इस पुस्तक में विहित है। उसका ये अंतिम संदेश परमेश्वर के कामों का पुनर्अवलोकन तथा अपनी प्रजा को प्रोत्साहन के शब्द है। वो उन्हें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि वे जाकर उस देश पर अधिकार करें जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा के अधीन रखा हुआ है। जो बातें मूसा ने यर्दन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दीजाहाब में सारे इसराइलियों से कही, वे ये हैं। व्यवस्था विवरण एक का एक। यहां पद दो की व्याख्या महत्वपूर्ण है। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इसराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। व्यवस्था विवरण एक, दो और तीन पद। होरेब से कादेश बरने तक की यात्रा 11 दिन की है, जिसके बाद प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश आरंभ होता है। ये यात्रा वैसी देखी जाए तो केवल 11 दिन की है और उसकी दूरी 189 किलोमीटर की है। इसी दूरी को पूरा करने में उन्हें 40 वर्ष और 11 महीने लगे थे। हम ये देख सकते हैं कि जंगल की यात्रा का ये भाग तो उचित अनुभव ही था। लाल सागर से चलकर प्रतिज्ञा के देश तक जंगल की यात्रा वास्तव में 11 दिन की ही थी, परंतु इस लंबी यात्रा का अनुभव वास्तव में आवश्यक नहीं था। मेरे विचार में ये इतिहास विचित्र ही है कि इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकलकर जंगल के मार्ग से प्रतिज्ञा के देश में लाना आत्मिक उपमा ही था। ये उपमाएं मसीह आचरण जीवन और अनुभव की है, और मिस्र दासत्व बंधुआई कठिनाइयों और संसारिक जीवन का प्रतीक है, अर्थात देह और शैतान का दासत्व। अतः ये हमारे पुराने जीवन का प्रतीक है। परमेश्वर उन्हें जिस देश में ला रहा था वो आत्मा में महिमा के जीवन और विजय का प्रतीक है जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। यही एक मसीही विश्वासी का जीवन है। वो पुराने जीवन से मुक्त होकर निकल आता है और परमेश्वर के साथ नए जीवन के अनुभव में प्रवेश करता है, जहां वो विश्वास में चलना सीखता है, जो दुनिया का त्याग और आत्मा की सहभागिता है। हमारे मसीही विकास और उन्नति में भी कुछ ऐसे अनुभव आते हैं, परंतु संपूर्ण जीवन के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा पूरा जीवन इन जंगल के अनुभवों में व्यतीत हो। परमेश्वर हमें आत्मा की संगति, आत्मा का जीवन और आत्मा की प्रभुता के आचरण में लाना चाहता है। ये आत्मिक जीवन पुराने मनुष्य की मृत्यु में आरंभ होता है। ये अवस्था हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, रोमियो 6:6। और गलातियों के विश्वासियों को वो लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, गलातियों 2:20। हमारे जीवन में एक युद्ध लगातार चलता रहता है। देह आत्मा से और आत्मा देह से परस्पर युद्ध करते रहते हैं। वे एक दूसरे पर विजय पाना चाहते हैं और प्रभुता स्थापित करना चाहते हैं। जो विजयी होता है उसके अनुरूप हमारा आचरण हो जाता है। अब यदि देह जयवंत हो तो हमारी मानसिकता बार बार देहिक लालसाओं की पूर्ति करना चाहेगी, अर्थात हमारा खाना पीना, रहन सहन, वस्त्र आदि सब देह के अनुरूप हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में देह आत्मा पर विजय पाए और हम अन्य जातियों की नाई, जानवरों का सा जीवन या संसारिक जिए। यही कारण है कि बाइबल हमें संसारिक लालसाओं और शरीर की अभिलाषाओं पर विजयी होने की शिक्षा देती है, जिससे कि हम आत्मा के अधीन रहे और हमारा युद्ध जो आत्मिक है उसमें जयवंत हो। मुझे ये स्पष्ट बोध होना है कि ये पुरानी देह अपनी लालसाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दी गई है और अब वे मुझ पर प्रभुता नहीं करती है। मैं पवित्र आत्मा के अधीन हूं। रोमियो की पत्री अध्याय 7 में पौलुस अपने जंगल का अनुभव की व्याख्या करते हुए कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था उत्तम है और उसको पूरा करने का निर्णय लेता है, परंतु उसने ये भी पाया कि एक और प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कोई अच्छाई नहीं है और उसमें बुराई सदैव वास करती है। जब वो धर्म का काम करना चाहता है तब वो उसे नहीं कर पाता, और जब वो अधर्म नहीं करना चाहता तब उसे वही होता रहता है, और अंत में वो अपने आप को हताश और निराश अवस्था में पाता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना और परमेश्वर की विधियों का पालन करना और उन्हें उचित मानना ही सही मार्ग है। यही मेरे जीवन की इच्छा है कि मैं परमेश्वर के आदेशों को मानूं और उनका मनोरथ सांगूं। परंतु वो अपनी उस अयोग्यता का वर्णन भी करता है जिसके कारण उसका देह परमेश्वर के आत्मा के साथ नहीं चल पाता है। पौलुस इसी निराशा का वर्णन करता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, रोमियो 7:24। अध्याय 8 में उसे अपना जवाब मिल जाता है। उसकी पुकार ही उसका उत्तर है। वो पुकारता है, मुझे कौन छुड़ाएगा। वो ये नहीं कहता मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा। वो बाहरी सहायता खोज रहा है। जंगल का अनुभव यही तो है कि जब मैं अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाता हूं और परमेश्वर से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब विफल नहीं होऊंगा तथा मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का भरसक प्रयास करता हूं, तभी ये विपक्षी व्यवस्था जिसका पौलुस उल्लेख करता है क्रियाशील हो जाती है। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो ही किया करता हूं। रोमियो 7:19। इस प्रकार मैं अपनी देह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला पाता हूं। परमेश्वर ने एक समाधान दिया है, देह की मृत्यु मनाओ। जब मैं विश्वास करता हूं तब मुझे समझना है कि मेरा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया है, जिससे कि मेरा नया मनुष्यत्व जो मसीह यीशु का स्वभाव है आत्मा का जीवन व्यतीत करे। ये पुकार अति आवश्यक है, मुझे कौन छुड़ाएगा। मुझे निराशा के उस स्थान पर आना आवश्यक है कि मैं जानूं कि मेरी धार्मिकता और कर्म सब निराशा का कारण है। मुझे बाहरी सहायता की आत्मा की आवश्यकता है, तब वो आकर अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा और वो काम करेगा जो मैं नहीं कर सकता। मुझे बोध हो जाता है कि मैं अपने आप को इस विकृत व्यवस्था से मुक्त करा नहीं सकता। इस प्रयास में मैं हर बार ही विफल रहा हूं। मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा। अब मैं अपनी असहाय अवस्था में परमेश्वर को पुकारता हूं, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा। ये सुनकर परमेश्वर कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8। जो काम मैं अपनी देहिक दुर्बलता के कारण नहीं कर पाता वो मैंने पाया कि परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मेरे लिए आगे को प्रबंध भी कर दिया। अतः आत्मा का जीवन और आचरण महिमा का अनुभव है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन में प्रवेश कराता है। यह अनंत जीवन है जो वो चाहता है कि हम उसकी संतान पाए। परमेश्वर की सदा यही इच्छा रही थी कि वो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले आए। उसकी ये इच्छा कभी नहीं थी कि वे जंगल में नाश हो। ये उनकी विफलता की त्रासदी थी, ये उनके विश्वास की चूक थी। वे विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश करने से चूक गए। परमेश्वर ने सब कुछ उनके सामने रख दिया था और कहा, ये लो, ये सब तुम्हारा है। परंतु उन्होंने वहां के भीमकाय मनुष्यों और ऊंची ऊंची शहरपनाओं को देखा, परमेश्वर को नहीं। उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की सामर्थ को देखने की अपेक्षा बाधाओं को देखने में लगाई थी। यही भूल हम भी करते हैं। हम अपने जीवन में देह की प्रभुता पर ही ध्यान देते हैं। हम बाधाओं को देखते और कहते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की, आपको नहीं मालूम मैं कब से उलझ रहा हूं, ये अपने वश में तो नहीं है। ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर की मुक्तिदायक सामर्थ को नहीं देखते जो हमारे विजयी होने में सहायक है। अतः हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम इस्राएल वंशियों की तरह चूक न जाएं, परंतु हम विश्वास के द्वारा विजय का और सामर्थ एवं शक्ति का वो स्थान ग्रहण करें जो आत्मा के संगति का है, और पुराने मनुष्यत्व को अर्थात स्वभाव को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ समझे। यही कारण था कि 11 दिन की यात्रा में उन्हें 40 वर्ष लगे। वास्तव में देखा जाए तो 41 वर्ष, क्योंकि जब उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा तब वो वर्ष 41वां वर्ष था, जिसके पहले महीने का वो 10वां दिन था। अब उन्होंने अपना विजय अभियान आरंभ किया। इस प्रकार होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इसराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा, अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान का राजा अशातरोत वासी ओग को एद्रोई में मार डाला, उसके बाद यर्दन के पार मोआब देश में वो व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 2-5 पद। अतः इस पुस्तक का नाम व्यवस्था विवरण यही से आता है। वास्तव में ये परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था का दोहराना था कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लेबनोन पर्वत तक और पारात नाम महानद तक रहने वाली कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किया देता हूं जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। व्यवस्था विवरण 1-6-8 पद। परमेश्वर उनसे कहता है, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अर्थात यहां भटकते हुए बहुत समय हो गया है। अब समय आ गया है कि यहां से कूच करो और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ग्रहण करो। अपने आत्मिक विकास अर्थात अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करो। कहने का अर्थ यह है कि इस देश में पहुंचो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे पितरों से की थी। मूसा उनसे उन कठिनाइयों का उल्लेख भी करता है जो उसने उस समय उठाई जब परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहा था। मैं अकेला तुम्हारी समस्याओं और बोझ को कैसे उठा सकता हूं? अतः परमेश्वर ने 70 प्रधानों को उनका सलाहकार नियुक्त किया कि वे उनकी समस्याओं को सुने और उनका न्याय करें। जब समस्या उनकी समझ से बाहर हो तब वे मूसा के पास आए। तब वे होरेब से डेरा उठाकर कादेश बरने तक आए। मूसा ने कादेश बरने में भी उनकी त्रासदीपूर्ण चूक की उन्हें याद दिलाई। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 1:21-22 पर। गिनती की पुस्तक हमें नहीं बताती है कि भेदियों ने आकर मूसा से निवेदन किया, परंतु व्यवस्था विवरण उसे कुछ अधिक जानकारी देती है। यहां हम देखते हैं कि भेदिये भेजने का निवेदन वास्तव में इसराइल की प्रजा की ओर से था जो मूसा को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने प्रत्येक गोत्र से एक एक व्यक्ति चुना कि जाकर उस देश का भेद लिया जाए। वे हेशकोल की तराई तक गए और जानकारियों के साथ फल भी लाए। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे। व्यवस्था विवरण 1:26-27 पर। देखो, वे परमेश्वर के लिए कैसी बुरी बातें कह रहे थे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण ہم کو مصر دیش سے نکال لے آیا ہے کہ ہم کو ایموریوں کے وش میں کر کے ستیاناش کر ڈالے۔ ویوستھا وورن پہلا ادھیائے 27 پد۔ یہ کہنا کہ پرمیشور ہم سے بیر رکھتا ہے، یہ کیسی بھینکر بات ہے، یہ پرمیشور کی نندا ہے۔ انہوں نے آ کر کہا، یہوا ہم سے بیر رکھتا ہے، اس کارن ہم کو مصر دیش سے نکال لے آیا ہے کہ ہم کو ایموریوں کے وش میں کر کے ستیاناش کر ڈالے۔ جبکہ سچائی تو یہ تھی کہ پرمیشور ان سے پریم کرتا تھا اور انہیں رہنے کے لیے ایک دیش دینا چاہتا تھا جو ان کا اپنا ہو۔ پرمیشور انہیں مصر کی کرور داستو سے مکتی دلانا چاہتا تھا، پرنتو یہاں وہ پرمیشور پر دوش لگا رہے ہیں کہ وہ ان سے گھرنا کرے۔ آیوب کے وشے میں لکھا ہے کہ اس کا سب کچھ ناش ہو گیا، اس کا پریوار، اس کی سمپدا آدی سب، پرنتو اس نے پرمیشور پر دوش نہیں لگایا، نہ ہی اسے برا کہا۔ یہ مورکتا ہے، ہم بھی ایسے ہی مورکتا کرتے ہیں جب ہم پریشانیوں سے گھر جاتے ہیں، ہم پرمیشور کو برا کہنے لگتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں جو مجھے کھند کرے۔ ایک دن میرے پاس ایک ویکتی آیا اور کہنے لگا، پرمیشور نے مجھے ریگستان جانے کو کہا اور وہاں لے جا کر میری درگتی کی، وہاں میں بھوک کے کارن مر ہی گیا تھا۔ دیکھیے، پرمیشور نے مجھے وہاں جانے کے لیے کہا اور میں کیسی وپدا میں پڑ گیا، اور اس نے جانے کیا کیا کہہ ڈالا کہ پرمیشور نے اسے کرنے کے لیے کہا، پرمیشور وہاں مجھے کیوں لے گیا اور پھر میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ تو پرتیکش تھا کہ پرمیشور اسے وہاں نہیں لے گیا تھا، وہ آدمی کلپنا میں بہ کر وہاں چلا گیا تھا اور اب وہ پرمیشور کے ورودھ شکایت کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، آپ چپ ہو جائیے، انیتا میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، میں پرمیشور کے بارے میں ایسی باتیں سن نہیں سکتا۔ پرمیشور پر دوش، یہی اسرائیل کے ونشج کر رہے ہیں، یہوا ہم سب سے بیر رکھتا ہے، اس کارن ہم کو مصر دیش سے نکال لے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسی انرتھ باتیں! اس کارن لوگ نراش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم کدھر جائیں؟ ہمارے بھائیوں نے یہ کہہ کے ہمارے من کو کچا کر دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے اور لمبے ہیں، اور وہاں کے نگر بڑے بڑے ہیں، اور ان کی شہر پناہ آکاش سے باتیں کرتی ہے۔ ویوستھا وورن 1:28۔ اناک ونشی دیتی تھے اور ہم نے وہاں اناک ونشیوں کو بھی دیکھا ہے۔ ویوستھا وورن 1:28۔ ان کے بھے کا کارن تھا ان کے نگروں کی اونچی اونچی شہر پناہ اور بھیم کائے لوگ۔ میں نے تم سے کہا، ان کے کارن بھے مت کھاؤ اور نہ ڈرو، تمہارا پرمیشور یہوا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہ آپ تمہاری اور سے لڑے گا، جیسے کہ اس نے مصر میں تمہارے دیکھتے تمہارے لیے کیا۔ پھر تم نے جنگل میں بھی دیکھا کہ جس ریتی کوئی پرش اپنے لڑکے کو اٹھائے چلتا ہے، اسی ریتی ہمارا پرمیشور یہوا ہم کو اس تھان پر پہنچانے تک اس سارے مارگ میں جس سے ہم آئے ہیں اٹھائے رہا۔ اس بات پر بھی تم نے اپنے اس پرمیشور یہوا پر وشواس نہیں کیا۔ ویوستھا وورن 1:29-32 پد۔ اوشواس کی ایک تراس دی، یہ پد میرے من کو اتھی پریا لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرمیشور ان کے ساتھ جنگل میں تھا، آج بھی وہ ایسی اگم اور درگم پرستھتیوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یدی آپ پرمیشور کی پرتیگیاؤں پر وشواس نہیں کر کے جنگل میں بھٹکنے کا انبھو کریں اور آپ کے لیے رکھے ہوئے ادھیکاروں کو پراپت نہ کریں، تو یہ پرمیشور کی اچھا نہیں ہے، پرنتو وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یدی آپ اسے کرنے دیں तो वो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा और आपके लिए सबसे अच्छा ही करेगा। हम ही अपने जीवन में उसके काम को सीमित कर देते हैं, हम ही अपने जीवन में उसके काम को बाधित करते हैं। भजन संहिता 78 का 41 में लिखा है कि उन्होंने इसराइल के पवित्र को अपने अविश्वास के कारण सीमित किया। हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों में बाधा डालते हैं। यदि हम उस पर विश्वास और भरोसा रखें तो वो हमको ऊंचाइयों तक लेकर चलेगा, परंतु हम ही हैं जो उसे करने नहीं देते। वो जंगल में भी कहता है, तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। व्यवस्था विवरण 1:33 पर। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि परमेश्वर जंगल में भी उनके साथ था कि उनके आगे चले और अच्छा स्थान खोजे कि वे अपना डेरा रखे, तब आग और बादल बनकर उनका मार्गदर्शन करे। ओह, काश आप विश्वास करें कि परमेश्वर के काम हमारे जीवन में कैसे महान है। उन्हें केवल यही लगता था कि वे एक अति उत्तम स्थान पर पहुंचे हैं। वाह, डेरा डालने के लिए तो ये अति उत्तम स्थान होता है, परंतु सत्य तो ये है कि परमेश्वर उनसे आगे चला और उस स्थान को उनके लिए तैयार किया जिससे कि वे कहें, हमारा प्रभु हमारी अगुवाई करता है, इससे और अधिक हम क्या मांगे। परंतु परमेश्वर उनकी बातें सुनकर क्रोधित हो गया और कहा, तुम वहां नहीं जाओगे। मूसा उन्हें ये भी याद दिलाता है कि उन्होंने मिलकर अपने पाप का अंगीकार किया और कहा, हम वहां अवश्य जाएंगे। मूसा ने कहा, नहीं, परमेश्वर उन्हें तुम्हारे हाथों में नहीं देगा। परंतु वे फिर भी गए और एमोरियों द्वारा खदेड़े गए और उनके जन मारे गए, क्योंकि परमेश्वर उनके मध्य नहीं था। वे परमेश्वर के बिना अपने ऊपर निर्भर होकर गए थे। इस प्रकार जंगल में उनका 40 वर्ष का वनवास आरंभ हुआ, जिसका उल्लेख मूसा अध्याय 2 में करता है।